इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हम यदि भगवान विष्णु की कान्हा की पूजा करें तो लक्ष्मी जी हमारे यहां स्वप्न आएंगी। क्यों? लक्ष्मी के पति कौन है और बिना पति के कभी पत्नी इतने दिन तक नहीं रह सकती है। बहुत से लोगों को देखो, हमारा पैसा तो बहुत कमाया पर लेकिन रोका नहीं। बोलते हैं ना, राधे राधे, कि पैसा तो बहुत कमाया जीवन में लेकिन रोकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है भैया, बताओ ना, क्यों नहीं रुकता है? क्यों? तुमने मेरे गोविंद को नहीं अपनाया है। और जब गोविंद को तुम अपना लोगे तो मैं वादा करता हूं व्यास पीठ से कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास से कभी नहीं जाएगी। राधे राधे। आज राधे, आज जैसे ही जब वहां से चले जाते हैं, आज भी राजा बलि के यहां जगत जोड़ी के दर्शन होते हैं। राजा लेकिन हमको भगवान को मानना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए। जब हम अपने गोपाल जी की पूजा करेंगे, कान्हा की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी दौड़ी हुई स्वतः तुम्हारे यहां चले होंगे। ध्यान दे लेना, मैंने बोला था ना आपसे, यदि मैं रणवीर जी को साथ मथुरा ले जाऊं और वही रख लूं तो क्या करोगे? तुमने कहा मैं तो भाग जाऊंगी, तो वही लक्ष्मी जी है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अब मैं आपकी बड़ी सुंदर कथा में लेके चलता हूं। कहां लेके चलूं बताओ? मुझे दिखा बिल्कुल नहीं करना है तो अब बताओ मैं दान किसके लिए लूं? अकेला मेरा शरीर तो जैसे तैसे राजा बलि ने बामन भगवान को मनाया तो बामन भगवान कहने लगे, राजन तुम एक काम करो, यहां बड़े कष्ट की बात आती है, मैं दान लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है और नहीं लेता हूं तो तुमको कष्ट होता है, तो एक काम कर लो। क्या? तस्मा तत्पत्तो मीशदेहम सुहात पदानि प्राणि विज्ञं तंपितानि पदान मम। राजन मुझे मात्र तीन पद, मुझे कितनी भूमि चाहिए? मात्र तीन पग भूमि दान में दे दो। कितनी? तीन पग। राजा बलि हंस पड़े, बल महाराज तीन पग भूमि? बामन भगवान बोले हां। और वो भी ना, मैं तुम्हारे पैरों से नहीं लूंगा, अपने पैरों से लूंगा। कैसी बात करते हो, महाराज तीन पग भूमि? दुनिया क्या कहेगी? राजा बलि हंस गए, अरे तीन पग भूमि पर तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछ पाएगा। राजन मेरी बात ध्यान से सुन लो, नहीं तो सवा तीन लोग ना पौने तीन लोग मात्र तीन पर भूमि दान दे। तो प्रभु एक काम करो, यहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप ना पढ़ो। बोले तुम पर दान करना भी नहीं आता, पर क्या करो, बल्कि दान करने से पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के दान। तो बोले ठीक है। अब संकल्प की बात जैसे चली तो राजा बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने आकर के तुरंत मना राजा बलि से कर दिया, मना कर दे, मैंने कोई दान की बात नहीं करी लेने देने की, चलो बाद में करेंगे। क्यों? शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि से, तू एक बामन का बच्चा नहीं है, ब्राह्मण का बच्चा नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। मत दे दान जमी को रे राजा बलि, मत दे दान यारी ने हे ना कश्यप मारो, बन के सिंह को बनी को रे राजा बलि, ये साक्षात विष्णु है, तू मना कर दे। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव तुम कैसी बात करते हो, मैं मना कर दूं? ऐसा कदाचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये साक्षात विष्णु है तो मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा शास्त्रों में नाम हो जाएगा। लोग कहेंगे कि एक समय ऐसा आया कि राजा बलि के यहां साक्षात विष्णु भिक्षा मांगने के लिए गए थे। यदि ब्राह्मण का बालक है तो मात्र तीन पग भूमि दान में देगा, मुझे कोई चिंता नहीं गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन तुम मुझे उल्टा रास्ता गलत रास्ता मत दिखाओ। लेकिन शुक्राचार्य ने मना इसलिए किया था कि मेरा चेला ना लुट जाए। अब मना कर दिया राजा बलि से, काश जल लेकर क्या हो, बिना जल की संकल्प नहीं होता। अब गंगा सागर में जैसे जल लेकर के राजा बलि आए तो शुक्राचार्य ने क्या किया, चालाकी दिखाई थोड़ी सी, तो एक भिंगे का रूप बनाया। भिंगा समझते हो आप, भिनुगा भिनुगा बहरा जो भौ 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 भौ, और वो सूक्ष्म रूप लेकर के गंगा सागर की नौक में चला गया, बैठ गया। क्यों? क्यों नहीं तो जल आएगा, जल कहां से आता गंगा सागर की नौक से? तो भिंगे का रूप बनाया और गंगा सागर की नौक में जाकर के बैठ गया। नहीं जलाएगा और नहीं संकल्प होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो मेरा चेला भी नहीं लुटेगा। अरे संकल्प करने के लिए तैयार हो, जल्दी छोड़ने के लिए, लेकिन जल ही नहीं है। भगवान तो साक्षात अंतर्यामी है। समझ गए भगवान की, शुक्राचार्य तुम्हारी बात नहीं चली, नहीं मानोगे। बामन भगवान ने अपने आसन से एक कुसा निकाला। क्या? एक कुसा, आसन से जो आसन होते ना कुसा वाले, हाँ, तो एक कुसा निकाला और गंगा सागर की नौक में चुभो, ऐसे दो तीन बार किया और वो ही कुसा शुक्राचार्य की आंख में जाकर के बैठ गया। और जैसे आंख में जाकर के बैठा तो शुक्राचार्य का एक बाजार बंद हो गया। शुक्राचार्य चिल्लाने लगा, अरे मेरी तो फोड़ दे, मेरी तो फोड़ दे, मेरी तो फोड़ दे। भगवान कहने लगे, राजन अरे शुक्राचार्य, देत है कोई, लेत है कोई, और तेने अपनी आंख बर्था में कोई? अरे मुझे राजा बलि दान कर रहा था और मैं ले रहा था, और तू अपनी आंख क्यों, क्या शिक्षा मिलती है सभा से हमको राजा? यदि कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चल रहा हो ना तो उसका मनोबल मत तोड़ो, मनोबल मत तोड़ो। यदि कोई धर्म के रास्ते कोई भंडारा कर रहा है, कोई भागवत करा रहा है, उससे ये मत करो भैया तुम क्या कर रहे हो, टांग पकड़ के मत खींचना, उनका साथ बढ़ाना, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुमको हमारी मदद चाहिए, तन से मन से, धन तो मेरा गोविंद देने वाला है, हम क्या देंगे और आप क्या दोगे। जो भी सहायता हो हमको बताना भैया, हम क्या सहायता करेंगे। अगर किसी की टांग पकड़ करके खींचोगे तो मान लेना अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मेरा भगवान सबका हिसाब कर देता है। अब तो राजन जैसे जल आया, संकल्प हुआ, तो राजा बलि ने कहा प्रभु नाप लो। राजन भगवान ने कहा संकल्प के बाद में प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करो। जैसी राजा बलि ने बामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उतनी देर में तो बामन भगवान अरबों किलोमीटर के हो गए हैं। बोलिए विराट रूप भगवान की, विराट रूप धारण कर लिया। राजा बलि ने नीचे से ऐसे सर आंख करके देखी तो बामन भगवान का तो चेहरा ही नहीं दिखाई दिया। पहले चरण से सारे पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे चरण को सब कुछ नाप दिया। आज राजन ब्रह्मा जी ने भगवान के बामन भगवान के चरण धोए हैं एक जल से, और वही गंगा जल है। कहते ना चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वही श्रीमती गंगा जी है। लेकिन दो चरणों में सब कुछ नाप लिया। बामन भगवान ने कहा रे राजन, तूने मुझे तीन पग भूमि दान करने को बोला और संकल्प था, लेकिन मैंने दो में सब कुछ नाप लिया, अब बोल मैं तीसरा चरण कहां रखूं। और जो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाता है ना, वो पाप का भागी होता है। बोलो क्या करूं। बोले प्रभु एक बात बताओ, आज राजा बलि ने बामन भगवान से प्रश्न किया है कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भैया धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है, बोलो ना। भगवान बोले धन का क्या बड़ा राजन, धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। राजा बलि ने कहा सच हां प्रभु, अभी तो आपने मेरे धन को ना पाए, अभी तो धन का मालिक शेष है, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दो। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दो। भगवान बोले रे राजन क्या बात है, ऐसा नहीं कि राजा बलि की पत्नी आई बच्चे आए भगवान पर क्रोधित हो गए होंगे कि क्या कर दिया, हमारे पति को लूट लिया, हमारे पिता को लूट लिया। नहीं, कहने लगे आज हम गदगद हो गए, आज हम गदगद हो गए। भगवान बोले राजन मैं तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन बोल आज मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु मुझे क्या चाहिए। नहीं राजन बोलो ना। राजा बलि ने कहा प्रभु मैं एक ही चीज चाहता हूं। क्या? मुझे नहीं तो धन चाहिए और ना दौलत चाहिए, सिर्फ एक वस्तु चाहिए, जब मैं अपने महलों के अंदर प्रवेश हूं मुझे सिर्फ आपके दर्शन होते रहे। भगवान बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं। राजा बलि ने कहा प्रभु ये तो मैंने नहीं कहा आप चौकीदार। अरे तो मुझे क्या पता तुम अपने महलों में कब घुसोगे तो कब निकलोगे। आज मालूम है भगवान राजा बलि के द्वार पर बैठ रहे और चौकीदारी करने लगे। कहते हैं ना भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना मैं कुछ नहीं हूं। तुम कहते हो कि भगवान दूर है, भगवान दूर नहीं है, तुम स्वयं भगवान से दूर हो। राजन लेकिन आज भगवान भक्त के वश में होकर के चौकीदार बन गए। और दादाजी ने मन में विचार किया ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी से जाकर के कहने लगे, भैया आजकल भगवान नजर नहीं आते हैं, क्या बात है? लक्ष्मी जी बोली, कहीं अपने भक्त के यहाँ दर्शन देने के लिए गए होंगे। नारद जी बोले, भक्त के दर्शन देने नहीं गई? अरे वो तो भैया एक चौकीदार बन गए, राजा बलि के यहाँ त्रिलोकी की भिक्षा लेने के लिए गए थे, जाकर के स्त्री में छिड़ गई। तो क्या करूं? नारद जी ने कहा, राजा बलि की कोई बहन नहीं है और बहन भाई का एक रिश्ता पवित्र होता है रक्षाबंधन का, और तुम जाओ राजा बलि को भैया बना लो और हाथ में राखी बांधना, और भाई का फर्ज होता है बहन को कुछ देना। जब तुम राखी बांधोगी और वो कहेगा क्या चाहिए, सो ही तुम अपने पति रूप भगवान को मान लो। आज लक्ष्मी ही जाती है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भैया बलि। जैसे देखा भगवान ने लक्ष्मी जी को आते तो नीचे को गर्दन झुक गई। लक्ष्मी जी बोली, बहुत अच्छी सुंदर झांकी है आपकी, क्या जरूरत पड़ गई? जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी वो नौकरी कर रहे हैं, भगवान के नीचे को ना गर्दन झुक गई। जाकर के आवाज लगाई, भैया बलि। बलि ने कही, मेरी कोई बहन फेन तो अपना है, पर ये भगवान की कहा कृपा है, चलो ये भी अच्छा अवसर है। और कहने लगी लक्ष्मी जी, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई,
छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर
हाथ
जैसे राजा बलि की राखी बांधी ना लक्ष्मी जी ने, तो बोले बहन तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी बोली भैया मेरे कच्छू ना चाहिए। क्यों? अरे तेने मेरे राखी बांधी और भैया को फर्ज कच्छू देने को हुई और तू कह रही है कच्छू ना चाहिए। राजा भैया तेरी कृपा से वो पे काउ चीज की कमी ना आते, लेकिन एक भैया ना सो भैया मिल गयो। अरे नारी तो एक कछु ना कछु तो लेना होगा। क्यों? खाली हाथ तो नहीं जाए भैया। कहा बताओ। अरे बोल बोल क्यों शरमाए रही है भैया। तेरी कृपा से ना वो पे काउ चीज की कमी ना आए, एक ही चीज की कमी है बस। काली चीज की कमी है बता। अरे बहन और भैया के यहाँ शरमा रही है, बता ना काली चीज की कमी है। भैया बताए ना शरम लग रही। अरे शरम की कहा बात है वो। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया जो मैं मांगूंगी तो तुम वो दे दोगे। पहले वो तिरवाचा, तिरवाचा का मतलब है तीन वचन दो। राजा बलि ने कहा बहन जो तू मांगेगी मैं इसको तो दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। राजा बलि ने हाथ दियो है सचिनों में बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है सचिनों में बांध लियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है सचिनों में बांध दियो है। जब लक्ष्मी ने चौकीदार को मान लिया राजा बलि ने कहा रे वाह। जब आयो हो बलि को ये छल के ले गई छल को। आयो हो बलि को ये ले गई छल के छल को। जब आयो हो बलि को ये छल के ले गई छल को। जब आयो हो बलि को ये ले गई छल के छल को। ये कोई जादू कर मार देना बलि को राजन बलि ने कहा वास्तव में मैं तो कहता था कि ये दुनिया का छलिया एक यही है, लेकिन ये तो छलिया की हुई छलनी निकली। राजन आज मालूम है जब वहां से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को ले गई, लेकिन क्या शिक्षा मिलती है। आदि जुगल जोड़ी के दर्शन राजा बलि के द्वार पर होते हैं। क्यों? हम लोग माया के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना। कहीं दुकानों में चले जाओ, कहीं ऑफिस में चले जाओ, सिर्फ एक एक चीज लिखी मिलेगी, लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर रहेगा। आज तक किसी के द्वार पर या किसी की दुकान में या तिजोरी में देखा कि काना का भंडार सदा भरपूर रहे। किसी दुकान में देखा राजन, राजन राधे राधे। आज जब देखा इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हम यदि भगवान विष्णु की काना की पूजा करें तो लक्ष्मी जी हमारे यहां स्वप्रिय आएंगी। क्यों? लक्ष्मी के पति कौन है? और बिना पति के कभी पत्नी इतने दिन तक नहीं रह सकती है। बहुत से लोगों को देखा हमारा पैसा तो बहुत कमाया पर लेकिन रोका नहीं। बोलते हैं ना राधे राधे कि पैसा तो बहुत कमाया जीवन में लेकिन रोकता नहीं। क्यों नहीं रुकता है भैया बताओ ना, क्यों नहीं रुकता है? क्यों? तुमने मेरे गोविंद को नहीं अपनाया है। और जब गोविंद को तुम अपना लोगे तो मैं वादा करता हूं व्यास पीठ से कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास से कभी नहीं जाएगी। राधे राधे। आज राधे आज जैसे ही जब वहां से चले जाते हैं आज भी राजा बलि के यहां जगत जोड़ी के दर्शन होते हैं। राजा लेकिन हमको भगवान को मानना चाहिए, भगवान को मनाना चाहिए। जब हम अपने गोपाल जी की पूजा करेंगे, कान्हा की पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी दौड़ी हुई स्वतः तुम्हारे यहाँ चले होंगे। ध्यान दे लेना, मैंने बोला था ना आपसे यदि मैं रणजीत जी को साथ मथुरा ले जाऊं और वही रख लूं तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो भाग जाऊंगी तो वही लक्ष्मी जी है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अब मैं आपको बड़ी सुंदर कथा में लेके चलता हूं। कहा लेके चलूं बताओ? बड़ी सुंदर भाव से राम कथा में प्रवेश होते हैं राजन। राजा प्रचंड कहने लगे सुखदेव जी से, महाराज मुझे आप राम कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहने लगे मैं तुम्हें राम कथा जरूर सुनाऊंगा। क्यों? जब तक राम कथा नहीं सुनते हैं जब तक कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं राजन। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहले मर्यादा में आओ उसके बाद में तुम कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी। आइए चलते हैं अयोध्या धाम की ओर सभी बड़े भाव से। हरे राम 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 हरे राम राम राम
Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Rama
कथा बड़े सुंदर भाव बड़े सूक्ष्म रूप में है। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेश, और इनके नैन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। क्या बात है भैया, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में है चंचलता। क्या है, लेकिन याद रखना जो राम ने अपने जीवन में किया है ना वो करना, और जो कृष्ण ने कहा है वो करना, जो कृष्ण ने किया है ना वो कदाचित मत करना। सुन रहे हो, जो कन्हैया ने किया है वो मत करना। क्यों नहीं मारे जाओगे आज के युग में? कन्हैया ने घर घर में जाकर के ब्रज गोपियों के घर में जाकर के माखन मिश्री दही दूध खाए थे, तुम घुस जाओगे किसी के घर में किसी गोपियों के यहां पे? मेरी कन्हैया ने गोपियों के साथ महाराज किया था। लेकिन राजन, जो कन्हैया ने किया वो कदाचित मत करना। जो मेरे कन्हैया ने कहा है, कन्हैया ने क्या कहा है, कन्हैया ने कहा है तू एक बार मेरे रास्ते पर चलते तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल तू तो कहना। गीता में लिखा है ना, तू एक बार मेरे मार्ग पर चल के देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल तू तो कहना। तू मेरे लिए कड़वे वचन समके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दू तो कहना। तू मेरे नाम पर लुटा के तो देख, तुझे धनवान ना बना दू तो कहना। और तू एक बार मेरी कथा समके तो देख, तेरे ज्ञान के पर्दे ना खोल दू तो कहना। भगवान ने कहा जो मैं कह रहा हूं वो सुन, वो कर, मेरे किए हुए को मत कर। जो राम ने अपने जीवन में किया है वो करो। राम ने क्या किया भैया जीवन में? राम ने अपने जीवन में अपने माता जैसे सुबह जगते थे ना रे, सुबह जगते ही ना क्या करते हो, माँ बाप को प्रणाम करते हो, पैर छूते हो, वही हाथों की रेखा देखते थे। प्रातः काल के रघुनाथा, प्रातः काल के रघुनाथा, काल उठे के रघुनाथा, मात पिता राजन राम जग के माता पिता के चरणों में प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते थे, और होना चाहिए। जो राम ने अपने जीवन में किया वो कदाचित मत करना मेरे भैया। जो राम ने अपने जीवन में किया वो करो, कृष्ण ने जो किया वो कदाचित मत करना मेरे भैया। क्यों, यदि हम कृष्ण के किए हुए को करोगे तो कहां होंगे भैया, समझ रहे हो, कहां होंगे? लेकिन जिस वंश में मेरे राघवेंद्र ने जन्म लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के हैं कश्यप, कश्यप के एक पुत्र है सूर्य, और उन्हीं के से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। राजन देवस प्रभु महाराज के पुत्र हुए सुदम, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गई और अंत में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। देवस मनु के मन में भारी चिंता हुई, उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है सर्व्याति। देवस मनु के सर्व्याति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। एक बार वो अपनी कन्या को लेकर के वन में गई, वह चवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और सारे शरीर पर दीमक लग गई, सिर्फ आंखों वाले दो गड्ढे रह गई, और उस सुकन्या ने चंचलता की वजह से एक तुनका लेकर के एक कुशा लेकर के चवन नाम के ऋषि की आंखों में चबो दिया और वो अंधे हो गए। चमत्कार से क्रोधित हुए और आज राजन सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में हुआ, लेकिन सुकन्या ने अपने पति की इतनी सेवा की, अपने पति की आंखों की रोशनी को वापस ले लिया। राजन सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा हुए, नभग नभग के हुए, नाभाग नाभाग के हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की एक विशेषता है, ध्यान देना क्या विशेषता है राजन। अम्बरीश महाराज जो भी एकादशी आती है ना, प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। और मैंने बोला भी था जो व्यक्ति एकादशी और ग्यारस के की होते हैं, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं नाराजन, उन्हें कभी यमराज के दर्शन नहीं होते, नहीं यमपुरी में जाते। लेकिन अपने जीवन में एक बात याद रखना, एकादशी व्रत कौन कितने लोग करते हैं, कोई करता है? एकादशी व्रत नहीं करते माता जी, करते हैं पर बहुत करेंगे। अकेली अम्मा करती है, कोई नहीं करता यहां से यहां तक है। ए माटी की गहमाओं, तुम खाने के लिए पैदा हुए, कम से कम एक दिन तो व्रत किया करो, उपवास किया करो। एकादशी करने के द्वार सीना देख पाए तो ये भी बात सत्य नहीं। मैं एक बात कहूंगा, यदि तुम विश्वास से मेरे कान्हा जी के चरणों में चलो तो सब कुछ देख पाओगे। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एकादशी व्रत करने वालों को ना द्वादशी तिथि में व्रत खोल लेना चाहिए, और कभी कभी द्वादशी तिथि में त्रयोदशी लग जाती है, यदि तुम त्रयोदशी में व्रत खोलोगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ध्यान देना, कोई फल नहीं मिलने वाला है। तो आज अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में व्रत खोलने वाले क्यों, त्रयोदशी लगने वाली है कुछ क्षणों में, इतनी देर में मां दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, क्या तुम भी व्रत हो और मैं भी व्रत हूं, मैं थोड़ा सा स्नान वगैरह करके आता हूं, फिर दोनों साथ में ही व्रत खोलेंगे, ठीक है। लेकिन वो दुर्वासा ऋषि लेट हो गए, नहीं आ पाए, त्रयोदशी लगने वाली थी। तो अम्बरीश महाराज जलपान करने वाले, राजन दुर्वासा ऋषि आ गए, अब क्रोधित हो गए, कहा मैं तुम्हारे द्वार पर आया, तुम मेरे से पहले व्रत खोलने लगी। एक सिर से जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी, उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो, और वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन मेरे गोविंद का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जलाकर के भस्म कर दिया। एक बात विशेष है, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति को सताने की सोचता है तो मेरा भगवान उनको स्वयं परास्त कर देता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्यों देखा ना, जब कृत्या नाम की राक्षसी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र स्वयं जलाकर के उसको भस्म कर दिया। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा मारने के लिए। राजन दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा जी आ गया। आज दुर्वासा जी अपनी सहायता मांगते हुए भोलेनाथ के पास में गई, भोलेनाथ ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास में गई, भगवान विष्णु के पास में गई, भगवान विष्णु ने कहा कि तूने मेरे भक्त का अपमान किया है और मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं, अगर तुझे मेरा भक्त ही क्षमा करेगा तो ही तू बच पाएगा। आज रोता हुआ, पिलकता हुआ, दौड़ता हुआ वही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास में गई, पर अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं, लेकिन जाकर के बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आज अम्बरीश महाराज ने भगवान के हाथ जोड़कर के कहा, हे भगवान, मैंने संत में और भगवान में कोई अंतर समझा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दोनों को समान समझा है तो अपने सुदर्शन चक्र को वापस बुला लो। आज मेरे भगवान ने सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। राजन वापस बुला लिया, दुर्वास राज जी के नेत्र सजल हो गए। सूर्यवंश की प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी योनास राजा हुए। सूर्यवंश की यह विशेषता रही है कि यहां बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं हुआ। और चंद्रवंश की यह विशेषता है कि बिना झगड़े का किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रवंश में कौन है, चंद्रवंश में कौन है, कान्हा जी। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो वंश हैं। सूर्यवंश में अवतार लिया है राम ने और चंद्रवंश में अवतार लिया है मेरी कान्हा ने। राजन बड़ी सुंदर बात है, आज वशिष्ठ राजा दशरथ जी जाते हैं अपने गुरुदेव के पास और कहने लगे, गुरुदेव मैं निसंतान रहूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, मन में बहुत बड़ी भारी गिलानी हुई है।
भूपाती नाई भय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
एक बार राजा के मन में बड़ी गुलामी हुई और अपने गुरुदेव के पास से कहने लगे, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं होगी क्या, मैं निसंतान रहूंगा, मेरे कोई पुत्र नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा, क्या ऐसी बात क्यों, क्या बात है।
हो गुरु गह गया
आज राजन वशिष्ठ देव जी ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, राजन तुम कैसी बात करते हो दशरथ जी, तुम्हारे यहां एक नहीं दो नहीं, तुम्हारे यहां चार चार पुत्र होंगे।
Yeah.
आज ये तीन पत्नी आए राजा दशरथ की, राजन
हो संजीवी सिंह पतिता बुलावा काम तो भैया जे
वहां पर पुत्र काम एक शुभ यज्ञ कराया जाता है राजन।
ओ भगत सहेबा मुनि आपत प्रगति अग्नि चलो
को बुलाकर केसरा के ऋषि को बुलाकर के वहां पर राजन एक पुत्र काम के लिए यज्ञ करवाया गया। और जब पुत्र काम के लिए यज्ञ करवाया तो तीन रानी को वहां बिठाया और आहुति भी दिए और उसी यज्ञ से अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए, खुश हुए और वो एक खीर का चरु लेकर के प्रकट हो गए। रानियों को बुला करके आधा भाग कौशल्या को खिला दो और आधे में आधा करके सुमित्रा और केकई को। और जैसे वो प्रसाद ग्रहण किया तो सभी रानी
हो सहित सब सुखदारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जादिन के हरि गर्भारे सकल लोक संपत सुख छाए राम सिया राम सिया राम जय जय
राजन। आज मालूम है नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवहित हर प्रीता, चैत्र मास के शुक्ल मास की नौमी तिथि अजित मौत दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र ने आकर के अवतार ले लिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भाई प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मन सुख बहकारी मन मन हारी, अद्भुत रूप बिहारी
संत हित लीन मनुज अवतार, इच्छा मेरे मिटे तनु माया गुनि गोपा।
रवींद्र भगवान की जय। आज राम जी दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या में आ गए, लेकिन किसी को भी नहीं पता भगवान आकर के चार चतुर्भुज रूप में आए। माता यशु कौशल्या से कहने लगी, माँ द्वार खोल दो जल्दी। क्यों? बाहर बहुत भीड़ लगी है मुझे दर्शन करने के लिए। मैया बोली, मैंने तो तुमको बेटा बनने को कहा था, तुमको बाबा बन के आयो 20 फुट के चतुर्भुज रूप धारण करके। भगवान बोले, मैया आप हमको पुत्र कर, हम आपको माँ कहेंगे तो हो गई ना। मैया बोली, पहले दो हाथ हटाओ, चतुर्भुज रूप धारण करना। तो भगवान ने दो हाथ हटा दिए। मैया बाहर बहुत भीड़ लगी है तो द्वार खोल दो ना। मैया बोली, पहले छोटी तो हो जाओ, लोग क्या कहेंगे कि 20 फुट का बेटा कैसे हुआ। अब भगवान छोटी हो गई, बोले अब तो मैया द्वार खोल दो। जब छोटी हो गई, अब मैया बोली, पहले नंगी हो जाओ, पहले दुनिया क्या कहेगी, ये जमाना क्या कहेगा कि वस्त्र पहन के कोई बच्चा पैदा होता है क्या।
माता पुनि बोली सुमत बोली
सभी। तो मैं कहूंगी कि मैंने एक लाला को जन्म दिया है, पहले छोटे हो नंगे हो, अब भगवान नंगे हो गए। मैया ने पल्ला में डाल के लगी, मैया अब तो द्वार खोल दो, देखो ना द्वार पर कितनी भीड़ लगी है, जल्दी खोलो ना। मैया बोली, पहले रो तो सही, जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे मालूम पड़ता है कि बच्चा हुआ है, रोता है तभी तो मालूम पड़ता है। अब भैया बोली, पहले रो। अब भगवान रोने लगे,
सुनी बचन सुजाना रोधन ठाना कोई बालक शोर रूपा
जय सुख लीला जय सुख लीला जय सुख परमी रूपा।
अब भगवान रोने लगे, रोने अब बोले भैया अब तो द्वार खोल दो। अब जैसे द्वार खोला देवता पुष्प पुष्प बरसा रहे, दिन के ठीक 12 बजे सूर्य नारायण दर्शन कर रहे। दिन में कौन निकलता है? अब चंद्रमा ने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं। चंद्रमा ने कहा सूर्य से थोड़े आगे हो जाओ ना, जैसे सूर्य नहीं हुए तो चंद्रमा थोड़े से दुखी हो गए। जैसे चंद्रमा दुखी हुए तो भगवान बोले तू चिंता ना कर, तुझे अभी दुखे ना, तू दुखे तेरे, तो एक काम कर, अब की बार मैं आया हूं सूर्य वंश में और अगली बार आऊंगा चंद्र वंश में। अब की बार आया हूं दिन के 12 बजे, अगली बार आऊंगा रात्रि के 12 बजे। और फिर भी तुझे खुशी नहीं है ना, याद रख जो मेरा भक्त होगा ना वो मेरे साथ में तेरा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है पता है?
रामचंद्र।
रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की।
ये राम जी ने उसी समय नाम के पीछे चंद्रमा चंद्र लगा दिया था कि चंद्रमा दुखी हुए थे। अब तो महाराज बड़ी सुंदर स्तुति हो रही है और सब लोग
हरे जन्म
देखो लाला भी होगा। अभी लाला से पहले राम जी हुए ना, थोड़ी सी तो खुशी मना लो ना, थोड़ी सी खुशी तो मना लो।
हरे जन्म चाहो भैया